ओम शांति। भक्ति मार्ग में 3-4 दिन लगाएंगे, एक देवी का दर्शन होता है, दूसरे देवी के लिए फिर आप 4 दिन जाओ, फिर 4 दिन के बाद किसी देवता के दर्शन, है ना? एक साथ कभी देखा है बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हो तो? और ज्ञान मार्ग में क्या होता है? एक ही क्लास में बैठे, एक ही सीट पे बैठकर इन सब महान विभूतियों के सिर्फ दर्शन मात्र नहीं, उन्होंने अपने ऐसे देवत्व को कैसे प्राप्त किया, ऐसे ऊंची स्थिति को कैसे पाया, फरिश्ते कैसे बने, ये सारे जीवन का अनुभव आपको एक घंटे में 50 साल के जीवन के सफर को स्पष्ट करने वाली है हमारी डॉक्टर सविता बहन। तो 50 साल हाफ सेंचुरी जीवन के अनमोल घड़ियां, 50 साल क्या होता है? पूरा ही जीवन के मूल्यवान समय होता है। उस मूल्यवान समय को ज्ञान रत्नों के साथ अपने आप को संवारने में लगाया, पिछले 38 वर्षों से अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस महान यज्ञ भूमि में, इस यज्ञ स्थान पे रहकर अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार, जैसे देवियां होते ना, वहां तो सिर्फ आप श्रृंगारे हुए देख करके आ जाते, और यहाँ की देवियां जो होती है ना, खुद भी श्रृंगारी रहती है और जो आने वाले को भी अपने जैसा ही श्रृंगारित करते नहीं करते है। जैसे खुद ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किए हुए है, आने वाली हर आत्मा को श्रृंगार करती रहती। तो ऐसे हमारी डॉक्टर सविता बहन, डॉक्टर और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही देखा जाए तो विपरीत दिशाएं हैं, है ना? स्पिरिचुअलिटी और डॉक्टर दोनों का समझ में कहीं से मिलता है नहीं, लेकिन इन्होंने दोनों धाराओं को मिला करके अपने जीवन को ऐसे ज्ञान गंगा बन करके, धारा बहन करके, सिर्फ भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में भी आपने सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। और आप महिला विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही, और नीचे जो मानस सरोवर है, सभी जानते ना मानस सरोवर में भट्टियां आदि होती है, तो वहां आप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बन करके अपनी सेवाएं दे रहे। तो आज हम सभी दीदी के मुखारविंद से अव्यक्त फरिश्ता स्थिति, जो हम सब का लक्ष्य है, हम सब बनना चाहते, ऐसे दीदी को देखने से भी झलक दिखाई देती नहीं देती है ना? दिखता है ना? तो ऐसी झलक दिखाने वाली हमारी डॉक्टर सविता बहन, पेशे से आप ऐसे तो डॉक्टर है, तो आज अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें, इसके ऊपर अपने अनुभवों को हमारे बीच में रखेंगे डॉक्टर सविता बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति। पांडव भवन बाबा की कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, और लास्ट के दिनों में भी बाबा स्वयं फरिश्ता बन करके इस भूमि पर अपने बच्चों की सेवा करते रहे। तो इसीलिए जब हम पांडव भवन में आते हैं भट्टी करने, तो मैं समझती हूँ किसी को भी फरिश्ता बनना मुश्किल नहीं लगता होगा, लगता है नहीं? क्या कहेंगे, आसान लगता है? क्योंकि फरिश्ता स्थिति हमारी योग की एक स्थिति है, आकारी रूप, ये साकारी रूप है, फिर हमारा आकारी रूप है, और फिर निराकारी रूप है। तो तीनों जो लेवल हैं, तीनों लोक जिसे हम कहते हैं, तीनों लोकों में हमारा जो स्वरूप है, उसमें से एक स्वरूप जो है वो फरिश्ता रूप है। तो जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर, तो देह का भान तजेंगे तभी हम फरिश्ता रूप धारण कर सकते हैं। और सूक्ष्म वतन में जो फरिश्ता रूप है उसकी भाषा क्या है? फरिश्तों की भाषा कौन सी होती है? साकार लोक की भाषा तो है कि हम मुख से बोल करके अपने भाव को व्यक्त करते हैं, टॉकी वर्ल्ड है ये वर्ल्ड जो है वो टॉकी वर्ल्ड है, लेकिन जो सूक्ष्म वतन है, जो फरिश्तों की दुनिया है, वो कौन सा वर्ल्ड है? मूवी वर्ल्ड है। यानी वहां पर साइलेंस की भाषा चलती है, मौन की भाषा चलती है, यानी भाव और भावना की भाषा चलती है ना। संकल्पों से एक दूसरे को समझ सकते हैं, जैसे नहीं संदेशी जब जाती है वतन में, हाँ तो बाबा कोई मुख से थोड़ी बोलते हैं, वो कैसे कैच करती है? जो बाबा के संकल्प हैं वो पूरी भाषा को वो कैच करती है। पर इसीलिए ग्रेड करते हैं कि कौन नंबर वन कैच कर सकता है, कौन नंबर टू, किसका संदेश परफेक्ट हो है या नहीं है। तो क्योंकि वो भाषा कैच करने के लिए अपने मन और बुद्धि कितना क्लियर चाहिए, वो कैचिंग पावर हमारे अंदर होगी तब हम वो भाषा को समझ सकेंगे। तो जो फरिश्तों की भाषा है वो संकल्प की भाषा है, वाणी की भाषा नहीं है। इसलिए हम कहते हैं स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। वो भाषा उससे भी श्रेष्ठ भाषा है, यानी वो भाषा जिसके अंदर इतनी पावर है कि एक सेकंड में हम उसके द्वारा किसी को भी पावरफुल अनुभव करा सकते हैं। तो ये हमारा फरिश्ता रूप है जिसको बाबा कहता है डबल लाइट स्थिति। तो डबल लाइट माना आत्मा की लाइट तो है ही है, आत्मा है, और उसके साथ साथ शरीर भी प्रकाश की काया, शरीर भी लाइट है। यहाँ है पांच तत्वों की काया, स्थूल वतन में ये पांच तत्वों की काया है, लेकिन जो फरिश्तों की काया है वो लाइट की काया है। तो हमें नॉलेज रूपी दर्पण में देखना है, वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देगी। जैसे हम आत्मा को भी नॉलेज रूपी दर्पण में देखते हैं, आत्मा दिखाई देती है क्या? लेकिन हम आत्मा को अनुभव करते हैं कैसे? नॉलेज से। तो ऐसे ही अपने फरिश्ता स्वरूप को हमें कैसे अनुभव करना है? नॉलेज के रूप से अपने आप को लाइट के कार्ब में देखें, हम लाइट के आकार में देखें। जब हम सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलते हैं तो बाबा कौन से आकार में है? रूरियान करते ना बाबा से, तो बाबा भी लाइट के आकार में है। तो अगर मैं सूक्ष्म वतन में बाबा से योग लगा रही हूँ तो मुझे बाबा के समान बनना पड़ेगा, तभी हमारा योग बाबा के साथ, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, समानता है बाबा के साथ। क्योंकि जब तक हम बाप समान स्थिति में नहीं होंगे तब तक हम बाबा को अनुभव नहीं कर सकेंगे ना। जैसे हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास क्यों करते हैं? आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, इसको हम राजयोग कहते हैं। तो शिव बाबा सदा निराकार है, अगर निराकार से हमको मिलन मनाना है तो क्या बनना पड़ेगा? निराकार बनना पड़ेगा, तब हमारा वो मिलन होगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा कारी फरिश्ता है सूक्ष्म वतन में, बाप दादा दोनों ही हैं। मतलब जब शिव बाबा को उनके तन का आधार लेना होता है, वहां सूक्ष्म वतन में भी बाबा, शिव बाबा उनके तन का आधार लेकर के हमें जो भी अनुभव कराना है बाबा कराते हैं। तो बाप दादा को हम उस रूप में देखें तो हमारा रूप भी वही हो, तो तुरंत हम अपने रूप को बदल सकें। उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? एक सेकंड। एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी और एक सेकंड में निराकारी। इसको बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल है। दुनिया वाले योग की ड्रिल करते हैं, अभी योग मास भी चल रहा है ना, जून मास जो है वो योगा की तैयारियां चलती हैं सारी दुनिया में, 21 जून को मनाते हैं। तो कितनी फटाफट अपनी बॉडी के पोस्चर्स को चेंज कर लेते हैं, है ना। तो वो है स्थूल, लेकिन ये हमारी ड्रिल है, सूक्ष्म ड्रिल है कि तुरंत हम अपने मन की स्थिति को जिस लेवल पर ले जाना चाहें उस लेवल पर ले जाएं, और जितना समय हम अपने मन को उस स्थिति में रखना चाहें, माना एकाग्रता बनाना चाहें वो हमारी हो जाए। तो अगर मैं अभी हम भट्टी कर रहे हैं ना, तो भट्टी में ये अनुभव करना हमारे लिए आसान है। तो मैं बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में आधा घंटा फरिश्ता रूप स्थिति के अनुभव में रहूं, ये मेरा संकल्प है। तो आधा घंटा पूरा मैं बाबा के साथ हूं, ऊपर से नीचे नहीं आए। हो सकता है, हो सकता है कि जितना समय मैं अपने मन को स्थित करना चाहूं, मेरा मन वही है। एक वैसे भी कहेंगे कि फरिश्ता माना जिसके सर्व रिश्ते एक के साथ हैं। तो सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, यानी दुनिया में भी कोई भी लौकिक अलौकिक जो हमारे रिश्ते हैं, उन सभी रिश्तों से न्यारा वो फरिश्ता है। कई बार हम लौकिक रिश्तों से थोड़ा न्यारे आसानी से हो जाते हैं, लेकिन अलौकिक रिश्तों में आ जाते हैं ना। अलौकिक रिश्तों में भी बाबा कहता है, अगर किसी को आपने भाई और बहन बनाया, माना दैवी परिवार के रिश्तों में भी कोई रिश्ते जोड़ लिए हमने, तो वो रिश्ता हम बाबा से उतना अनुभव नहीं कर पाएंगे, वो बाबा से हमारा हल्का हो जाएगा। तो सर्व रिश्तों में वो कमी हो जाएगी। तो मेरे सर्व रिश्ते एक बाबा के साथ है, माना एक बाबा दूसरा ना कोई, और बाकी सभी रिश्ते निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र क्यों कहता है बाबा, भले ही हम प्रवृत्ति में रहते हैं, माना ये सब रिश्ते हमारे सेवा अर्थ हैं। अभी हम यहाँ क्यों हैं, इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में हम क्यों हैं, है ना, क्यों हैं बताइए। सेवा अर्थ है, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। बाबा ने हमें उस पुराने तन में सिर्फ सेवा के अर्थ रखा हुआ है। तो जिनके भी साथ हैं हम, वो संबंध हमारा क्या है, सिर्फ सेवा अर्थ। तो मेरा भाव वही होना चाहिए सेवा का। तो फिर जब मेरे सभी रिश्ते एक बाबा के साथ हैं, बाबा ही मेरे सर्व संबंधी हैं, तो फिर आधा घंटा बाबा के साथ बिताना मुश्किल होगा। जिसके साथ फुल प्यार होता है, उससे आप बातें करते हैं तो टाइम कब बीत गया पता चलता है, घंटों भी बीत जाते हैं तो भी पता नहीं चलता। तो अगर बाबा से उतना प्यार है, उतना गहरा रिश्ता है, तो वो वतन में आधा घंटा क्या एक घंटा भी बीत गया मेरा बाबा के साथ, पता चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। अगर पता चलता है इसका मतलब, माना कुछ मिनट मैं ऊपर कुछ मिनट नीचे, फिर कोशिश करके मेहनत करके ऊपर जा रही हूँ फिर नीचे आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी फरिश्ता हम, माना सर्व रिश्ते हमारे एक बाबा से ही हैं। पुरानी देहे, पुरानी दुनिया और पुराने संबंधों से हम पूरी तरह से न्यारे अभी नहीं हुए हैं। तो फरिश्ता माना जिससे पुरानी दुनिया का कोई आकर्षण आकर्षित न करे। बाबा कहते हैं जैसे रॉकेट उड़ता है, तो रॉकेट जब धरती के गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाता है तो उसकी स्पीड अनलिमिटेड होती है। इसलिए रॉकेट जैसी स्पीड और किसी चीज की नहीं होती। तो दुनिया के गुरुत्वाकर्षण से उसको पार होना पड़ता है, और फिर उसके बाद जो है वो अपने लक्ष्य को सहज हासिल कर लेता है, जहां भी उसको पहुंचना है। तो ऐसे ही जब तक हम धरती के आकर्षण से परे नहीं होंगे, अब हमारी धरती कौन सी है, इस देह रूपी धरती के आकर्षण से परे, यानी फर्श पर नहीं रहना। ये देह को बाबा फर्श कहता है, फर्श से अर्श पर जाना। और जब अर्श पर रहना यानी सूक्ष्म वतन में रहना। तो जब हम अर्श पर होते हैं, यानी उड़ती कला वाले ऊंची स्थिति के स्थान पर हम हैं, तो जैसे एरोप्लेन उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, उड़ती कला उसी को कहते ना, क्योंकि एरोप्लेन उड़ता है। एरोप्लेन चलता है ऐसे नहीं कहते, एरोप्लेन दौड़ता है ऐसे नहीं कहते, क्या कहते हैं, उड़ता है। तो जब वो उड़ता है तो फिर उसके नीचे कुछ भी हो, पहाड़ हो, नदियां हो, कोई शहर का ट्रैफिक हो, उससे उसको कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है क्या? क्योंकि उसकी ऊंचाई इतनी है कि उसके लिए वो चीजें कोई मायने ही नहीं रखती। तो बाबा यही हमें कहता है कि अगर हम सचमुच इन आकर्षणों से परे हैं, तो फिर इस दुनिया की कोई भी बातें, कोई भी परिस्थितियां हो, कोई भी समस्याएं हो, और पहाड़ जैसी हो, जैसे कहा पहाड़ को भी वो आसानी से पार कर लेता है, तो पहाड़ जैसी भी बातें हो, उसे हम कैसे पार करेंगे? कैसे पार करेंगे? जैसे कि कुछ है ही नहीं। हमारे लिए वो जैसे एक मनोरंजन होगा, जैसे ऊपर से नीचे झांक के देखते ना एरोप्लेन में, तो कितना मजा आता है, देखो पहाड़ कैसे दिख रहे हैं, हाँ देखो वो शहर कैसा दिख रहा है, छोटे छोटे डब्बे जैसे घर दिखते हैं। जिन्होंने भी प्लेन में यात्रा की होगी वो सब है ना इसके अनुभवी हैं। तो ऐसे ही फील होता है कि कितनी भी बड़ी बात हो वो कैसे लगेगी? एकदम छोटी। तो ये फरिश्ता स्थिति है, ये अनुभव हम करें। और उड़ती कला का अनुभव जो बाबा कहता है कैसे होगा? फरिश्तों को पंख दिखाते हैं, वो उड़ती कला का प्रतीक है। कोई स्थूल में पंख नहीं निकले होते, हाँ, लेकिन वो किसका प्रतीक है? हमारी ही उड़ती कला का प्रतीक है। तो वो उड़ती कला कैसे होती है? दो पंख क्यों दिखाते हैं? ज्ञान और योग के पंख, वो ही हमें उड़ाते हैं। तो जितना हम संपूर्ण ज्ञान, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, सभी ज्ञान के राजों में पूर्ण होंगे, कोई भी राज हम मिस नहीं करते। जिसको हम कहते हैं, बाबा नहीं कहता है कि रोज मुरली सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर मुरली में कोई ना कोई ऐसी नई पॉइंट होती है, और अगर हमने नहीं सुना तो हम उसको मिस कर देंगे। तो कोई भी ज्ञान के राज हमसे मिस नहीं होते। और योग बाबा के साथ हमारा पूरा है, जो कहा कि सर्व संबंध हमारे, योग माना संबंध, तो सर्व संबंध मेरे एक बाबा के साथ हैं। तो ये पंख हमें उड़ाते हैं। और उसके साथ जो फरिश्ते हैं उनकी भाव और भावना क्या होगी? उमंग उत्साह के पंख। दूसरे जो पंख हैं वो कौन से हैं? उमंग उत्साह के पंख हैं, जो सदा उनको सेवा में तत्पर रखते हैं, क्योंकि फरिश्तों का जीवन ही है सेवा के लिए। फरिश्तों को क्या मानते हैं दुनिया में भी? क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सहयोगी मानते हैं ना। किसी को आप फरिश्ता क्यों कहते हैं? मानो कोई व्यक्ति मुसीबत में है और उसको किसी ने मदद कर दी, सचमुच ऐसी मुसीबत, और जिस समय उसको इतनी मदद चाहिए थी और कोई आकर के सचमुच निस्वार्थ भाव से वो हमारे लिए कर देता है जो हमें चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? आप तो मेरे लिए जैसे फरिश्ता बनकर आए। तो ऐसे ही फरिश्ता नहीं कहा है ना, जब उसने हमारे लिए कुछ किया तब हमने उसको फरिश्ता कहा, और वो भी निस्वार्थ भाव से। अगर वो हमसे कोई अपेक्षा रखे कि भाई हमने तेरे लिए इतना किया अब तुम भी करो, तो उसको हम फरिश्ता नहीं कहेंगे। लेकिन निस्वार्थ भाव से वो किसी ने हमारे लिए किया। तो फरिश्ते माना सदा ऐसी भावना वाले कि सदा ही स्नेह सहयोग की भावना हो सभी आत्माओं के प्रति। तो निस्वार्थ हम कैसे कहेंगे उसको? निस्वार्थ कैसे कहेंगे? मानो कोई मेरे से स्नेह नहीं रखता है, फिर भी हम स्नेह दे सकते हैं, तभी निस्वार्थ कहेंगे ना। दुनिया में सब थोड़ी हमको स्नेह देंगे, जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है वो तो हमें स्नेह नहीं देने वाले है ना। 90% स्नेह देने वाले होंगे, लेकिन 10% कौन से होंगे? जो हमसे थोड़ा नफरत भी करते होंगे, हमसे द्वेष भाव भी रखते होंगे, हमसे ईर्ष्या भी रखते होंगे, तो ऐसे भी तो हैं हमारे जीवन में। तो उनके प्रति भी हमारी स्नेह सहयोग की भावना हो। कोई ग्लानी करने वाला भी है, उसके प्रति भी हमारी शुभ भावना है। बाबा कहता है ग्लानी को भी गायन समझे, उसको हम फरिश्ता कहेंगे। फिर कोई भी हो उसके प्रति हिम्मत उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना है, कि हम खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरे को भी उमंग उत्साह और हिम्मत हम दे सकते हैं। सर्व के प्रति हमारी कल्याण की भावना है। तो फरिश्ते माना सबके प्यारे। अभी बाबा ने संडे को मुरली चलाई ना, तो ये इसी के ऊपर बाबा की मुरली थी कि वो सबके प्यारे होंगे। केवल प्यार करने वाले के प्यारे नहीं, लेकिन सर्व आत्माओं के प्यारे। कैसे एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। ब्रह्मा बाबा के लिए सबके मन से निकलता था बाबा मेरा है। तो मेरा किसके प्रति निकलेगा, माना हरेक को आपसे अपनापन अनुभव हो। और वो कब होगा, जब हम हल्के होंगे, सरल होंगे, स्वभाव संस्कार संकल्प बोल कर्म सब में हल्के होंगे, संबंध संपर्क में हल्के होंगे। तभी कोई हिम्मत करेगा ना हमसे बात करने की, और उसे हमें लगेगा, उसको हमसे लगेगा कि ये जैसे कि अपने हैं, इनसे हम कोई भी बात कह सकते हैं। जैसे बाबा के पास बच्चे भी आराम से चले जाते थे और बाबा बच्चों से भी खेल लेते थे, तो बच्चों को लगता था बाबा मेरा है। फिर कोई बुजुर्ग से बुजुर्ग है, वो भी बाबा के पास जाके बैठेगा तो उसको लगेगा बाबा मेरा है। और यहाँ तक कि जो विरोधी थे यज्ञ के, जब वो बाबा से मिलते थे तो उनको भी लगता था कि ये तो हमारी गलत भावना है, लेकिन बाबा तो ऐसे नहीं है। सुनते हैं ना, मारने वाला आ गया बाबा के लिए, फिर भी बाबा ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया। बाबा को पता चल गया, उसने खुद ही बता दिया, क्योंकि उसको साक्षात्कार करा दिया शिव बाबा ने। तो जब उसको साक्षात्कार हो गया तो वो समझ गया कि मैं गलत उस जगह पर आ गया, गलत व्यक्ति को मारने आ गया। तो उसने अपने आप से ही बता दिया कि मैं बाबा आपको मारने के लिए आया था। फिर भी बाबा ने कहा, बच्चे कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना। और ही उसको टोली दिया, प्यार किया और बच्चे बच्चे कहा, तो उसको बाबा ने उसको भी अपना जैसे बना लिया। तो हल्के माना हर रीति से। मन में किसी के प्रति भारीपन क्यों आता है, बोझ जिसको हम कहते हैं ना, तो व्यर्थ संकल्पों का। किसी के प्रति भी हम व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, नेगेटिव संकल्प चलाते हैं, वो बोझ बन जाता है। फिर वो हमें फरिश्ता बनने नहीं देगा। या हमारे ही पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं, पुराने संस्कारों का बोझ होता है, अपने ही पाप कर्मों का बोझ होता है ना। हमारे पुराने 63 जन्मों के हिसाब किताब जो विकर्म है, बाबा कहता है वो विकर्मों का बोझ। तो क्यों नहीं हम उड़ती कला का अनुभव हमेशा कर पाते, उसका कारण ये कोई ना कोई बोझ हमें नीचे ले आता है। तो ये सारे बोझ खत्म, बाबा कहता है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति ना हो सकती है, लेकिन लेकिन फिर वैसा पुरुषार्थ भी हमारा चाहिए कि ये सारे बोझ से हम 1 सेकंड में न्यारे बन जाएं। तो जैसे कि वो एरोप्लेन धरती को छोड़ता है, धरती को छोड़ता है तब आसमान में उड़ता है। तो यही कहा कि 1 सेकंड में देह सहित देह के सब संबंधों से और देह के पदार्थों की भी आकर्षण होती है ना। तो वो पदार्थ यानी जो वैभव है, उन वैभवों की भी आकर्षण से परे मन बुद्धि हो जाए तो हम उसको अनुभव करेंगे। फिर फरिश्ता स्थिति माना, बाबा कहता है कि ये स्थिति में हम किसी के भी संकल्पों को सहज रीड कर सकते हैं। जैसे कहा ना, संकल्प की भाषा की स्थिति है ये। तो अगर मैं परख सकती हूँ किसी भी आत्मा को, जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है, अगर मैं उसको मिलते ही मुझे समझ में आ जाता है, तो फिर हम इसको सूक्ष्म कहेंगे, है ना। स्थूल रूप में आज का इंसान अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। तो अगर हमको वो रीड करने की पावर नहीं है, तो फिर हम केवल उसके स्थूल व्यवहार से ही उसको जज करते हैं। तो हो सकता है सामने तो हमसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे अलग हो सकता है, है ना। तो कलयुग तो है ही यही, कलयुग की दुनिया। इसको क्यों कहते हैं, जैसे कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, तो जो आपको दिखाई दे रहा है वो सच है ही नहीं, तो उसमें बहुत बनावट है। लेकिन अगर मेरी वो स्थिति है, क्योंकि फरिश्ता स्थिति सूक्ष्म स्थिति है, तो मैं सूक्ष्म भाव भावनाओं को कैच करने की पावर रखती हूँ, है ना। ये बहुत ऊंची स्टेज है, ये कहने में आसान है, लेकिन जब तक हमारा वो अभ्यास नहीं है जो बाबा हमें फरिश्ता स्थिति का अभ्यास कहता है, तब तक हम इस लेवल पर नहीं आ सकते। और इसीलिए हमारी दादियों में ये पावर थी, बाबा में तो थी ही थी, लेकिन दादियों में, जैसे हम नहीं सुनते बाबा ने लास्ट के दिनों में फरिश्ता स्थिति का कितना अभ्यास किया, तो जब दादियां सुनाने आती थी बाबा को, कि दादियां सोच करके आते थे सेवा करके, हम इतनी सेवा करके आए, अब हम बाबा को इतना सुनाएंगे और ये पूछेंगे जो भी हमारे को पूछना है बाबा से, तो बाबा के सामने जाते ही क्या होता था उनको, क्योंकि बाबा की स्थिति इतनी अव्यक्त थी, तो वो दादियों को लगता था ये कौन सी बात हम बाबा से करेंगे, है ना। और जैसे कि उत्तर हमें बिना कहे ही बाबा से जैसे मिल रहा है, क्योंकि बाबा ने समझा और बाबा ने संकल्प से ही वो पावर उनको महसूस करा दी, तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो दादियां हमेशा ये सुनाते हैं अपना कि बाबा जैसे कि उपराम और न्यारे अनुभव होते थे, माना जैसे कि हमारे सामने हैं भी और नहीं भी हैं। ये सुनते हैं ना बाबा की वो स्थिति जो कर्मातीत स्थिति थी, जो अंत में, क्योंकि फरिश्ता स्थिति कर्मातीत स्थिति ही है, तो वो बाबा ने अनुभव कराया। तो ऐसी स्थिति हमारी, बाबा ने उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किया। जब बाबा को ये संदेश मिला, संदेश ही बाबा को नहीं पता था कि मेरा कोई लाइट का रूप भी है वतन में, है ना, लेकिन संदेशी ने बाबा को ये बताया कि बाबा मैंने ऊपर एक बाबा देखा जिसमें बहुत लाइट थी, ना आपके जैसे ही थे, लेकिन आपकी लाइट कम है और उनकी लाइट बहुत ज्यादा थी। तो फिर बाबा ने 2 बजे उठकर जो योग करना शुरू किया, उसके बाद बाबा ने वो मेहनत की कि मैं उस जैसा जो वतन में बाबा है, जो अव्यक्त बाबा है, ऐसा ही मुझे स्थूल रूप में रहते हुए अपना स्वरूप बनाना है। और इसीलिए अंत में बाबा फरिश्ता ही अनुभव होते थे, माना स्थूल में भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव बाबा के द्वारा होता था। और अभी भी जो आत्माएं, ना अब हमारी दादियां तो नहीं रहे, मम्मा बाबा भी नहीं है, कर्मातीत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो महारथी आत्माएं ये पुरुषार्थ करती हैं, उनके द्वारा भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ, उनको हमसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, है ना। मानो हमारा दृष्टि लेने का, बाबा ने जो दृष्टि लेने की विधि रखी है, क्यों रखी है, तो कितने मिनट की दृष्टि मिलती है, क्योंकि ऐसी आत्माएं तो बिजी रहती हैं, कितना मिनट मिलते हैं हम उनसे। जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कितनी देर मिलते हैं, कितनी देर मिलते हैं देवी देवताओं के सामने, जो भी मुख्य मंदिर होते हैं, क्योंकि मुख्य देवताओं की ही पूजा होती है, तो हमेशा भीड़ होती है और दर्शन कैसे होते हैं, धक्के वाले, घुसेंगे अंदर, 1 मिनट भी कोई खड़ा नहीं रहने देगा मूर्ति के सामने। यहाँ तो संगम युग पर फिर भी बाबा ने हमें बहुत सौभाग्य दिया है कि बहुत आराम से बैठ करके, हम शांति से बैठ करके सुनते हैं, मिलते हैं, जो भी ना। लेकिन वो स्थूल जड़ मूर्तियों में तो उतना भी भाग्य नहीं कि 1 मिनट भी कोई शांति से वहां खड़ा रहने दे और हमें वो अनुभव लेने दे, है ना। तो ऐसे ही जब हम पर्सनल मिलते हैं, ना पर्सनल मिलने की अगर हम बात करें, तो फिर कितना समय हम दादियों से भी मिलते थे, या जो भी अभी हमारे महारथी भाई बहने हैं उनसे हम मिलते हैं, कितना समय मिलता है हमें, ना कुछ मिनट मिलते होंगे, चलो कोई विशेष किसी की बात है तो थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन ज्यादा हम कैसे उनसे लेते हैं, उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से, वो हम प्राप्ति का अनुभव करते हैं। वाणी से उतना नहीं जितना कि हम, जैसे अभी हमारी रत्न मोहिनी दादी जी थे, लास्ट के दिनों में दादी बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। आप में से भी कुछ भाई बहने मिले होंगे दादी को, तो कैसे मिलते थे? वो दादी का बिल्कुल फरिश्ता रूप था, और बस दादी की वो दृष्टि ली और दादी की मतलब दादी से मिले बस उतना ही, और उससे लगता था कि जैसे सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहता है फरिश्ते माना जो अपने फीचर्स से फ्यूचर को दिखाने वाले हैं, उनके फीचर्स ही ऐसे होंगे जो प्राप्ति का अनुभव कराने वाले होंगे। जैसे बताया कि जो भी देवी देवताएं भी अपने फीचर्स से अभी भी सेवा कर रहे हैं, भले जड़ मूर्ति है लेकिन अनुभव करा देती है ना शांति का, शक्ति का, खुशी का। तभी तो लोग दुनिया इतने दर्शन, इतने भक्त उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ भी हम चैतन्य में ऐसे चरित्र हमने निभाए हैं तभी तो उसके यादगार बने हैं। तो हमारे भी फीचर्स ऐसे हों जो वो फ्यूचर दिखाई दे, फरिश्ता फ्यूचर दिखाई दे। तो फरिश्ते के फीचर्स कैसे होंगे? कैसे होंगे? शांति के होंगे, सुख के होंगे। माना चेहरे से ही शांति छलके, चेहरे से ही सुख का अनुभव हो, चेहरे से ही खुशी का अनुभव हो। होता है नहीं होता है? होता है ना। तो जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं उनके चेहरे से वो अनुभव भी जरूर होता है। जितना हमारी नेगेटिविटी जाना बोझ खत्म होते जाएंगे, जिसको बाबा ने कहा फरिश्ता माना हल्का। तो किसी भी प्रकार का बोझ जितना हमारे से खत्म हो गया उतना ही हमारे फीचर्स में जो हमारे निजी गुण है, ये हमारे आत्मा का निजी स्वरूप निजी गुण है ना, तो वो स्वतः ही प्रकट होगा, क्योंकि उसको कवर करने वाला कोई चीज है ही नहीं ना। हमारे ये जो पाप कर्मों के बोझ हैं यही हमारे इसको दबाते हैं। और दूसरी बात कि जो फरिश्ता है वो कोई जिम्मेवारी का बोझ भी खुद लेकर नहीं चलता। सब जिम्मेवारी किसकी है? मेरा सब कुछ किसका है? बाबा का है। तो ऐसे नहीं कोई हम कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे, चाहे हम अपनी प्रवृत्ति संभाल रहे हैं, चाहे सेंटर पर रह करके हम सेवा कर रहे हैं, वो सेवा की प्रवृत्ति भी उस प्रवृत्ति से ज्यादा बड़ी है ना आज के समय में। तो जो सेवाओं की प्रवृत्ति है तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी तो बढ़ती ही जाएगी, सेवाएं समय अनुसार बढ़ती जाएंगी। कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक एक को कितने कितने सेंटर भी संभालने पड़ेंगे, लेकिन वो सब जिम्मेवारी संभालते हुए भी हल्के। तो कैसे रह सकते हैं हल्के? कैसे रह सकते हैं कि कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? बाबा करण करावन हार है, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूं। अभी जो संडे की मुरली में बाबा ने यही बात कही कि मैं जिम्मेवार हूं, मेरा मेरापन, मैं और मेरापन यही बोझ लेकर आता है। लेकिन उसकी बजाय क्या समझना है? निमित्त, निमित्त समझना है और निर्माण बनना है। तो अपने आप निर्मल हो जाएंगे। तो बाबा के ऊपर ही सारा बोझ है। जब बच्चे बड़ों के साथ होते हैं तो किसके ऊपर बोझ रखते हैं? कौन लेता है ना? बच्चे तो मस्त हल्के होते हैं, खुश रहते हैं, मौज में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ संभालने वाले हमारे हैं, माँ बाप हैं। तो ऐसे ही हमारा कौन है? सब कुछ बाबा है। तो फिर हम किस पर रखेंगे? तो कोई भी ऐसी बात आती है जो मन पर बोझ पैदा करती है तुरंत हमें किसको ट्रांसफर कर देना है? बाबा को। और हम हल्के रहें। तो जितना हम इस रीति से ना मेरे को तेरे में बदल देंगे, मेरा कुछ भी नहीं ना, संबंधों में भी सबसे ज्यादा जो मोह के संबंध होते हैं उसमें भी, जैसे मानो मेरा बेटा है, और बाबा कहता है माताओं को तो ज्यादा बेटे से भी ज्यादा पोते पोती में है ना, उसमें मूल से भी ब्याज प्यारा होता है, तो उसमें ज्यादा मोह होता है, तो वो भी मेरे नहीं। कौन है? सब बाबा के हैं। और कोई भी उनका कर्म व्यवहार है मानो अनुकूल नहीं है, आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जिसमें हम चलाना चाहते हैं उसमें नहीं चलते हैं, तो भी क्या है? बाबा जिम्मेवार है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा जाने, मुझे बोझ रखना ही नहीं किसी भी बात का। मतलब हमारे जीवन कर्म व्यवहार में कितनी बातें आती रहती हैं, जो भी है, धन की हो सकती है, अपने शरीर की हो सकती है, बीमारी, कर्म, तन के हिसाब किताब हो सकते हैं, जो कहा बच्चों से संबंधित हो सकती है, कोई भी बातें ऊपर नीचे होती हैं जिंदगी में, लेकिन किसी का भी बोझ अपने ऊपर नहीं लेना है। तो बाबा के ऊपर रखेंगे तो सदा हल्के रहेंगे। फिर बाबा कहता है जो फरिश्ता स्थिति है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप ये समझो जैसे बाबा किसी तन का आधार लेते हैं। बाबा आते हैं अपना कर्म करने के लिए, थोड़े समय के लिए शरीर का आधार लिया और फिर चले गए। शिव बाबा कैसे आते हैं, थोड़े समय के लिए आए और फिर चले गए। तो ऐसे ही मैं फरिश्ता इस देह में आया और मैंने इस शरीर से कर्म किया, और जैसे ही कर्म पूरा हुआ हम क्या हो गए, फिर से अव्यक्त स्थिति में, माना व्यक्त में आए। कर्म करने के लिए हमें व्यक्त में आना पड़ता है, इस देह का आधार लेना पड़ता है, लेकिन लिया और कर्म पूरा हुआ और हम फिर से न्यारे हो गए, फिर से वो फरिश्ता स्थिति में आ गए। जैसे बाबा फिर सदा ही निराकार है, थोड़े समय के लिए साकार शरीर में आया, और उसके लिए बाबा कहता हमेशा अपने को मेहमान समझो कि इस पुराने तन में मैं मेहमान हूं। मेहमान जहां भी जाते हैं उनको किसी भी चीज से लगाव नहीं होता, पता है कि यहाँ हम रहने वाले नहीं है, यहाँ से तो हमको जाना है। कहीं भी हम जाते हैं, मधुबन में आते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि मधुबन हमारा घर है। बाबा कहते हैं जहाँ आप रहते हो वो तो सेवा स्थान है, लेकिन मधुबन क्या है, घर है। तो मधुबन में आते हैं तो जाने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन जाना तो पड़ता है। तो भले ही इससे हमें लगाव है ना, मेहमान का लगाव नहीं होता है, लेकिन ये हमारा घर है और इससे अगर हमारा लगाव है तो ये शुद्ध लगाव है, क्योंकि ये बार बार हमें मधुबन ले आएगा, और मधुबन लाएगा तो बाबा याद आएगा। मधुबन में कौन है, बाबा है, तो वो तो हमारे लिए और ही हमारी स्वउन्नति को या हमें और ही उड़ती कला में ले जाने में मददगार है। तो मधुबन की बात नहीं, लेकिन और भी किसी स्थान पर हम जाते हैं दुनिया में तो कभी भी कितना भी हमें अच्छा लगे, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से हमें जाना है, तो फिर ठीक है, देख लिया, साक्षी होकर देखते हैं, सब नजारे देखते हैं, सब स्थान देखते हैं, और फिर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में हम थोड़े समय के मेहमान हैं, इस पुरानी देह में भी हम मेहमान हैं, और बाबा ने हमें महान बनने के लिए यहाँ रखा है। तो इस ये भावना हमें रखनी है, ये युक्ति हमें अपनानी है। और साथी और साक्षी, आज संदेश में था ना, शशि बहन जी सुना रहे थे संदेश, तो बाबा ने क्या वरदान दिया, नहीं गिफ्ट दिया कि साथी और साक्षी बनना है। तो जितना साक्षी अवस्था रहेगी हमारी, साक्षी माना उपराम, वो सहज उपराम हो सकते हैं, और बाबा साथी है तो हमारे लिए उपराम होना मुश्किल नहीं है। फिर फरिश्ता जो है वो अंतःवाहक शरीर है। अंतःवाहक शरीर माना ये शरीर से हम कहीं एक स्थान पर जाते हैं ना, लेकिन उसमें समय शक्ति लगती है, धन भी लगता है, लेकिन फरिश्ते को कहीं भी जाने में ना समय लगता है और ना ही संपत्ति लगती है। हम कहीं भी जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में फरिश्ता स्वरूप के द्वारा यात्रा कर सकते हैं, नहीं कर सकते है ना। तो फरिश्ता जो है वो कहीं भी एक सेकंड में उपस्थित हो सकता है, और जहां उसकी आवश्यकता है वहां वो हाजिर हो जाए, क्योंकि ये मन का वाहन है। अंतःवाहक कहने का मतलब जो हमारा अंतर्चक्षु है, हमारा मन है, वो ही वाहन बनता है ना, कहीं भी जाने के लिए। तो उस रूप में जैसे बाबा ने फरिश्ता रूप में सेवा की, हम सुनते हैं बाबा कैसे है ना, बाबा के फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कईयों को होता रहा है, खासकर विदेशों में जो सेवाएं हुई वो बाबा के फरिश्ता स्वरूप के द्वारा हुई। साकार बाबा के समय विदेश में सेंटर नहीं थे, साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद विदेश की सेवाएं शुरू हुई, तो बाबा के अव्यक्त रूप के द्वारा ही विदेश के सेंटर खुले। अव्यक्त स्वरूप बाबा कहते हैं ना, अव्यक्त रचना है वो, जो विदेशी हैं हम भी, जो साकार के बाद आए वो बाबा की कौन सी रचना है, अव्यक्त रचना है। तो बाबा ने उस रूप में सेवा जो की उसमें कई ऐसे आत्माएं थी जिनको, जैसे साक्षात्कार सबको तो नहीं होते हैं लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भाग्यशाली आत्माएं जिनको बाबा ने वो साक्षात्कार कराए और वो बाबा के अनन्य बच्चे बने जो बाबा की सेवाओं के निमित्त हैं आज विदेश में। और यहाँ तक कि भारत में भी अभी तक ब्रह्मा बाबा के वो साक्षात्कार होते हैं। आप में से कोई है जिनको ज्ञान में आने से पहले ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप का साक्षात्कार हुआ हो? पहले पूछती हूँ, ज्ञान में आने से पहले, बाद में ज्ञान में आए? लंबा हाथ उठाओ, जो भी उठा रहे लंबा उठाओ। हाँ देखो, इस छोटी सी सभा में भी 5-6 लोग हैं जो ज्ञान में आने से पहले बाबा के साक्षात्कार के द्वारा यहाँ आए, और फिर ज्ञान में आने के बाद जिन्हें, अब जिन्होंने पहले उठा लिया वो मत उठाना, ज्ञान में आने के बाद जिन्हें फिर साक्षात्कार हुआ, देखो वो भी कितने, वो तो बहुत हैं, वो तो अभी गिनती नहीं कर सकते, इतने ज्यादा हैं। तो इसका मतलब बाबा अभी भी हमारी कैसे सेवा कर रहे हैं? तो बाबा कहता है जो फरिश्ता स्वरूप लाइट का स्वरूप है वही साक्षात्कार मूर्त है, यानी अंत समय में जो साक्षात्कार होंगे, आदि सो अंत होना है, तो अंत समय में वो साक्षात्कार कौन आत्माएं करा पाएंगी, साक्षात्कार कर भी पाएंगी और करा भी पाएंगी, वो कौन करा पाएंगी, जो अव्यक्त फरिश्ता स्थिति तक पहुंचेंगे, अपनी वो स्थिति जो आत्मा बना पाएंगी। अभी तक बाबा का और दादियों का ही क्यों होता है, क्योंकि अभी तक वो ही फरिश्ता बने हैं, हम तो अभी बन रहे हैं, तो हम बने नहीं, इसलिए अभी हम साक्षात्कार वाली स्थिति से दूर हैं। तो जब वो लाइट स्वरूप होगा, जैसे लाइट में ही साक्षात्कार होता है ना, बिना लाइट के कुछ दिखाई देता है क्या? अब हम आपस में एक दो को देख पा रहे हैं तो लाइट जल रही है तभी देख पा रहे हैं ना, अगर अंधेरा हो है ना रात का, अभी तो सूरज की भी लाइट है, मानो रात का अंधेरा होता है तो कुछ दिखाई देता है, कोई नहीं देख पाता। तो लाइट स्वरूप होगा हमारा तभी वो साक्षात्कार हम अन्य आत्माओं को कराएंगे। तो फिर ये मनसा सेवा, फरिश्ता स्वरूप जो है वो हमारा मनसा सेवा का साधन है। तो बाबा कहता है जहां भी आपको लगता है आपकी सेवा की आवश्यकता है, आज दुनिया में कितनी आपदाएं होती रहती हैं, समय प्रति समय कुछ ना कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जो एक साथ कई आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं, समाचार तो पता चलता ही है ना, तो मानो उन आत्माओं को मुझे हिम्मत देनी है, उत्साह देना है ना, उसमें आशा का संचार करना है, या शांति देनी है, शक्ति देनी है, जो भी देना है, तो उनको मैं वहां पहुंचकर अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा पहुंचकर, और बाबा कहता है अगर आप माइट हाउस भी हैं, यानी इतने पावरफुल हैं, तो वो आत्माएं भी अनुभव करेंगी कि कोई आया और किसी ने मुझे ये अनुभव कराया। तो वो सचमुच अपनी उस स्थिति से निकलकर हिम्मत में आ जाएंगे, उनको वो शक्ति मिल जाएगी, उनमें वो उत्साह आ जाएगा और उस मुसीबत से वो पार हो जाएंगे। जैसे कहा ना, फरिश्ते का काम क्या है कि कोई भी आत्मा जो मुश्किल में है उसे मुश्किल से सहज बना देना, उसको समय पर मदद कर देना। तो मेरा कर्तव्य, मैं ऐसे समय पर पालन करूं, फिर वो दुनिया में चाहे किसी भी कोने में हो रहा हो, क्योंकि सभी कौन है, हमारा ही परिवार है, सब बाबा के बच्चे हैं तो सब कौन है, हमारा ही परिवार है, तो सबके प्रति हमारा वो फर्ज बनता है कि हम उनको वो समय रहते अनुभव करा दें। फिर फरिश्ता जो होता है, वो फरिश्ता बाबा कहता है सदा ही न्यारा होगा। न्यारा माना कर्म बंधनों से न्यारा, कर्म संबंध में आने वाला होगा। तो ऐसा नहीं है कि संसार के संबंधों में हम नहीं रहेंगे, लेकिन संबंध में रहते हुए भी दुख का अनुभव नहीं। जो कर्म बंधन होते हैं वो दुख का अनुभव कराते हैं, लेकिन जो कर्म संबंध होते हैं वो सदा सुख के संबंध हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि जो भी हमारे संपर्क में आएगा, ना तो हम दुख देंगे और ना ही दुख लेंगे। तो हमारे संपर्क से सब आत्माओं को सुख की अनुभूति होगी, और कोई दुख देने वाला भी होगा उसको भी हम सुखी कर देंगे। वो स्थिति, वो फरिश्ते की स्थिति है। तो ये सब विशेषताएं बाबा हमें कहते हैं। ये तो संक्षिप्त में क्लास हुआ, और भी हम विस्तार करें इसका तो और भी विस्तार हो सकता है। तो हम ये पुरुषार्थ करें जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। हम सबकी अपनी अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति है, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि सब एक जैसे फरिश्ता नहीं बनने वाले, है ना। हमेशा ही पुरुषार्थ नंबरवार का ही है। तो मेरी वो संपूर्ण स्थिति को मैं सामने रखते हुए वो पुरुषार्थ मैं करती रहूं जैसे बाबा ने दादियों ने किया। और अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बाबा कहते हैं। ऐसा नहीं कि लास्ट समय हम कर लेंगे, और फिर लास्ट समय का तो हमारा भरोसा भी नहीं है ना, किसका लास्ट समय कब होगा कह सकते हैं क्या। तो वो अभी से हम वो अटेंशन देंगे अपनी अवस्था बनाने का। बाबा तो ये भी कहता है कि ये स्थूल वतन में रहते हुए हम अपने आप को फरिश्ता ऐसे समझें जैसे कि मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बोल रहा हूँ, मैं लाइट में ही हूँ। भले ही वो अपनी बुद्धि से अनुभव करना है, लेकिन इस स्थिति को ही यहाँ स्थूल में भी बनाओ। केवल वतन में अनुभव करने की बात नहीं, और दूसरे को भी क्या देखो, ये भी बाबा ने संडे की मुरली में कहा था, दूसरे को भी क्या देखो, फरिश्ता देखो। चाहे कोई भी आत्मा मेरे सम्मुख आ रही है, तो ये तो हमें अभ्यास अटेंशन देकर के करना पड़ेगा, तभी हम वो अनुभव उस अव्यक्त स्थिति में, माना व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहने का अनुभव, वो पुरुषार्थ हम अभी से करें। तब सचमुच फिर हमारी फरिश्ता स्थिति के जो रिजल्ट्स बाबा हमें कहता है कि वो फरिश्ता स्थिति की सिद्धि, बाबा कहता है अगर 4 मिनट भी आप अशरीरी बन गए तो जैसे 4 घंटे आपने आराम कर लिया, ऐसा अनुभव होगा। माना वो इतनी पावरफुल स्टेज है, क्योंकि स्थूल और सूक्ष्म में अंतर तो है ना। सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल होता है, स्थूल से कई गुना पावरफुल। सूक्ष्म की आज साइंस अपने चमत्कार दिखा रही है ना, जितनी सूक्ष्मता में जा रही है साइंस, आज उतना ही उसके मिराकल्स हम अनुभव करते हैं। तो जितनी हमारी सूक्ष्म स्थिति होगी, उतने ही सिद्धि, जो बाबा हमें कहता है कि एक योगी के प्रमाण से जो हमारी संकल्प सिद्ध हो जाए, जो संकल्प किया वैसा ही वो हो। पर अगर अभी तक हमारे संकल्प नेगेटिव हैं और फिर वो सिद्ध होने लगे तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे अभी तक कि 100% हमारा मन पॉजिटिव ही है, 100% हमारे संकल्प शुद्ध ही हैं, किसी के प्रति हमारी अकल्याण की अंश मात्र भी भावना नहीं है, तब वो सिद्धि हमारे में आती है। ओम शांति।
ओम शांति। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही, या साकार के समय में कोई है नहीं, एक ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, फरिश्ता बने, कितनों का जन्म हो गया, जितने भी हम यहाँ बैठे हुए हम सब का अलौकिक जन्म कब हुआ, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद एक आत्मा फरिश्ता बनी तो उसका रिजल्ट। अब हम सारे फरिश्ते बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। आज का बाबा का संदेश था, संदेश में दीदी ने क्या सुनाया, अभी जितना आत्माओं को संदेश देने की स्पीड होनी चाहिए भी बच्चों में कमी दिखाई दे रही है। तो हम सारे फरिश्ते बन जाएं तो बाबा की बेहद की सेवा क्या हो जाएगी, स्पीड तरीके से होगी। दीदी ने बहुत सुंदर प्रकाश डाला ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखते हुए, कैसे बाबा ने फास्ट गति का पुरुषार्थ करते हुए फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किया। हम कर्म क्षेत्र में रहते हुए किन किन बातों से डिटैच होते हुए कैसा अभ्यास करते हुए हमेशा फरिश्तों को क्या दिखाते, बहुत मेहनत कर रहे थे, फरिश्तों को याद किया, ऊपर से आए आकर के फटाफट किया और एक कप चाय तो पिलाओ कहा। फरिश्तों ने कहा थोड़ा थैंक्स तो दे दो हमको, नहीं आए और फुर उड़ करके चले गए। कभी भी इंतजार नहीं किया, कभी भी किसी चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे कोई थैंक्स दे दे। दीदी सवेरे से मैं सेवा कर रही हूँ, दीदी ने तो देखा ही नहीं, एक बार भी क्या थैंक्स भी नहीं किया, एक कप चाय भी नहीं पिलाया, है ना, आता है ना संकल्प। फरिश्तों को एक भी संकल्प में आए सेवा की और उड़ के जाते। कहानियां तो सुनी थी ना हम सब ने, अब हम सबको ऐसे ही फरिश्ते बनना है। तो आप सबका क्या हाल चाल है, पक्का सभी की चाल कैसी है, पक्का अभी दीदी देखेंगे, ठीक है। आप सभी सचमुच में हाल खुशहाल, सबके चेहरे चमक रहे हैं, किसी को नींद तो नहीं आ रही थी ना, नहीं सब फरिश्ते बन गए थे। फरिश्ते स्थिति का अनुभव सिर्फ सुना नहीं, यहाँ के एक एक क्लास सिर्फ सुना नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है। अनुभव करते हुए फरिश्ता स्थिति का आप सबने अनुभव किया, इसीलिए प्यारी दीदी का, मीठी दीदी का हम सभी एक हाथ से ताली बजा करके दिल से हम सभी धन्यवाद देंगे, ठीक है।
सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजर पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजर पड़ी, मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीद बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं, ये फरिश्ते जो जमीन पे से उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं, खुशियों भरा।